सुजीत कुमार की आवाज़ में अगला अध्याय व्यवस्थापिका तुलनात्मक विश्लेषण लेजिस्लेटर कंपरेटिव एनालिसिस। सी एफ स्ट्रॉन्ग ने कहा है कि आधुनिक समय में सरकारों में व्यवस्थापिकाएं लोकतंत्र के चलते ज्वार के अनुपात में उभरती गई हैं। व्यवस्थापिका का अर्थ एक देश के लिए कानून निर्माण और शासन की नीति को निर्धारित करने का कार्य सरकार के जिस अंग द्वारा किया जाता है उसे व्यवस्थापिका कहते हैं। व्यवस्थापिका को विधायिका या विधानपालिका भी कहते हैं। यह सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यह समूचे देश के लिए विधियों का निर्माण करती है। अच्छी विधियों पर ही सरकार की सफलता निर्भर करती है। एक लोकतंत्रीय राज्य में व्यवस्थापिका सर्वोपरि होती है। संसदीय सरकार के अंतर्गत व्यवस्थापिका यह भी निर्णय करती है कि कौन सा शासन करेगा। वहाँ सरकार की नीतियों एवं कार्यों पर व्यवस्थापिका में ही विचार विमर्श होता है। उनकी आलोचना की जाती है और उनमें संशोधन अथवा परिवर्तन कराए जाते हैं। व्यवस्थापिका सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होती है। यह जनता का दर्पण सी एफ स्ट्रॉन्ग के अनुसार आधुनिक संवैधानिक राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। व्यवस्थापिका अथवा कानून बनाने वाली संस्था ही होती है। विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इंग्लैंड और भारत में इसे संसद कहा जाता है, अमेरिका में कांग्रेस, स्विट्जरलैंड में इसे राष्ट्रीय सभा तथा चीन में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और रूसी संघ में इसे संघीय सभा का नाम दिया गया है। व्यवस्थापिका के कार्य बहुत कुछ सीमा तक शासन पद्धति के रूप में निर्भर करते हैं। एक तंत्र, राजतंत्र या अधिनायक तंत्र में व्यवस्थापिका के कोई विशेष कार्य नहीं होते, किंतु लोकतंत्रात्मक राज्य में व्यवस्थापिका की शक्ति और कार्य बहुत अधिक होते हैं। लोकतंत्रीय राज्यों में भी संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में व्यवस्थापिका की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। संसदात्मक शासन में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जैसा कि अध्यक्षात्मक शासन में संभव नहीं है। सामान्य रूप से लोकतंत्रीय राज्यों में व्यवस्थापिका के द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पहला, कानून निर्माण संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका का सबसे मुख्य एवं महत्वपूर्ण कार्य कानूनों का निर्माण करना होता है। यह विभाग के विधेयकों का प्रारूप तैयार करता है, उन पर वाद विवाद करता है और फिर उन्हें स्वीकार कर कानून का रूप प्रदान करता है। व्यवस्थापिका पुराने कानूनों में संशोधन, परिवर्तन व उन्हें समाप्त करने का कार्य भी करती है। दूसरा, संविधान संशोधन का कार्य। प्रायः सभी देशों में व्यवस्थापिका संविधान में संशोधन का कार्य करती है। यद्यपि विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका के द्वारा यह कार्य भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड में पार्लियामेंट अपने सामान्य बहुमत से ही संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, लेकिन अमेरिका, भारत आदि देशों में संविधान में संशोधन की पद्धति सामान्य कानून निर्माण की पद्धति से भिन्न है। तीसरा, विमर्शात्मक कार्य। व्यवस्थापिका का एक प्रमुख कार्य विचार विमर्श करना होता है। व्यवस्थापिका के लिए जो पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है वह फ्रांसीसी शब्द पार्लियामेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ विचार करने के निमित्त सभा है। व्यवस्थापिका में विभिन्न स्वार्थों, दृष्टिकोणों तथा समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत एवं स्वतंत्र विचार विनिमय होता है। विचारों के आदान प्रदान का संचालन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से करने के लिए व्यवस्थापिका कुछ निश्चित नियमों के आधार पर कार्य करती है। चौथा, आर्थिक कार्य। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका कानून निर्माण के साथ साथ राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखने का कार्य भी करती है। आर्थिक कार्यों के अंतर्गत व्यवस्थापिका यह निश्चित करती है कि किन साधनों से धन प्राप्त किया जाए। व्यवस्थापिका की स्वीकृति के बिना आय व्यय से संबंधित कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। पांचवा, प्रशासन संबंधी कार्य। यद्यपि व्यवस्थापिका सीधे तौर पर प्रशासनिक कार्य में भाग नहीं लेती, लेकिन प्रशासन पर नियंत्रण अवश्य ही रखती है। व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन संबंधी यह कार्य संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन पद्धतियों में भिन्न भिन्न रूपों में किया जाता है। संसदात्मक शासन में व्यवस्थापिका प्रश्नों, स्थगन प्रस्तावों, निंदा प्रस्तावों और अविश्वास प्रस्तावों के माध्यम से कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष नियंत्रण रखती है और कार्यपालिका का अस्तित्व व्यवस्थापिका की इच्छा पर निर्भर करता है। अध्यक्षात्मक शासन में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण रखती है, जैसे अमेरिका में कार्यपालिका जो महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ और संधियाँ करती हैं उसके संबंध में सीनेट की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। छठा, न्याय संबंधी कार्य। अनेक देशों में व्यवस्थापिका न्याय संबंधी कार्य भी करती है। फ्रांस की काउंसिल ऑफ रिपब्लिक, अमेरिका की कांग्रेस और भारत की संसद को उच्च कार्यपालिका पदाधिकारियों पर अभियोग लगाने और उनके निर्णय का अधिकार प्राप्त है। इंग्लैंड में तो व्यवस्थापिका का उच्च सदन हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। सातवां, निर्वाचन संबंधी कार्य। अधिकांश देशों में व्यवस्थापिकाएं निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती हैं। उदाहरण के लिए फ्रांस के दोनों सदन मिलकर वहां के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका न्यायाधीशों और मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव करती है। भारत में भी संघीय संसद तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आठवां, समितियों और आयोगों की नियुक्ति। विधानमंडल समय समय पर किन्हीं विशेष कार्यों की जांच करने के लिए समितियों और आयोगों की नियुक्ति का कार्य करता है और इनके माध्यम से शासन के कार्यों की छानबीन की जाती है। इसके अलावा अमेरिका, इंग्लैंड, भारत आदि सभी देशों में सरकारी निगमों की रचना की गई है। इन निगमों की गतिविधियों और कार्यों पर संसद का पूरा नियंत्रण रहता है। नौवां, जन भावनाओं की अभिव्यक्ति। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका एक ऐसा स्थान है जहां पर जनता के प्रतिनिधि सरकार का ध्यान जनता के कष्टों के प्रति आकर्षित करते हैं और शासन को जनहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका को जनता का रंगमंच कहा जा सकता है। ब्रिटिश व्यवस्थापिका संसद। ब्रिटिश संसद की प्रभुसत्ता। वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद की संप्रभुता ब्रिटिश संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। ब्रिटिश संसद कानून निर्माण की सामान्य प्रक्रिया के आधार पर ही सभी विषयों के संबंध में कानून का निर्माण कर सकती है और इसके द्वारा निर्मित कानून को किसी के भी द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। सैद्धांतिक दृष्टि से कानून निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटिश संसद को प्राप्त इस असीमित शक्ति को ही संसद की संप्रभुता कहा जाता है। इस संबंध में सर एडवर्ड कोक ने लिखा है, संसद की शक्ति तथा अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि इसमें इसकी कोई सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। ब्लैकस्टोन, ऑग, सर मैथ्यू हेल तथा डी टॉकवेली ने भी संसद की संप्रभुता का बखान किया है। डाइसी ने संसद की संप्रभुता पर विशेष बल दिया है। संविधान लचीला होने के कारण ब्रिटिश संसद एक ऐसा प्रभुत्व शक्ति संपन्न निकाय है जो संविधान निर्मात्र और कानून निर्मात्र दोनों ही प्रकार की शक्तियों का उपभोग करता है। ब्रिटिश संसद की इस प्रभुसत्ता से अभिप्राय यह है कि क, ब्रिटिश संसद कोई भी कानून बना सकती है, ख, किसी कानून को भंग कर सकती है, ग, ब्रिटिश संविधान में कोई ऐसा सीमा चिन्ह नहीं है जिससे यह निर्णय हो सके कि कौन सा कानून मौलिक है और कौन सा अमौलिक। किसी व्यक्ति या किसी न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि वह संसद द्वारा निर्मित कानूनों को अस्वीकार कर सके। ब्रिटिश संसद द्वारा अब तक निर्मित कानूनों के आधार पर भी संसद की संप्रभुता स्पष्ट हो जाती है। सन 1701 के उत्तराधिकार संबंधी अधिनियम द्वारा सम्राट पद के उत्तराधिकार संबंधी नियम निर्धारित किए गए। सन 1717 के सप्तवर्षीय कानून द्वारा सम्राट पद के उत्तराधिकारी द्वारा लोक सदन की अवधि 3 वर्ष बढ़ाकर 7 वर्ष कर दी गई और 1911 व 1949 के संसदीय अधिनियम द्वारा लॉर्ड सभा की शक्तियों को सीमित कर दिया गया। संसदीय संप्रभुता पर सीमाएं। यद्यपि वैधानिक दृष्टि से ब्रिटिश संसद पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न है और उसके द्वारा किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण किया जा सकता है, किंतु प्रत्येक वैधानिक तथा राजनीतिक सत्य नहीं होता। व्यवहार में संसद की प्रभुसत्ता पर अनेक प्रतिबंध हैं जिनकी विवेचना निम्न रूपों में की जा सकती है। पहला, जनमत। जनमत संसदीय संप्रभुता पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध है। वर्तमान समय में संसद की प्रभुसत्ता का तात्पर्य लोक सदन की प्रभुसत्ता से ही होता है। लोक सदन द्वारा जनता प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है और इसके द्वारा जनमत के विरुद्ध किसी कानून के निर्माण का साहस नहीं किया जा सकता। संसद समाचार पत्र और जनमत निर्माण के साधनों पर पूरी पूरी दृष्टि रखती है। उसके लिए जनमत के उल्लंघन का अर्थ आत्मघात ही होता है। दूसरा, नैतिक बंधन। वैधानिक दृष्टि से संसद प्रभु सत्तावान है, लेकिन व्यवहार में संसद के द्वारा नैतिक धारणाओं के विरुद्ध किसी कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तीसरा, परंपराएं। ब्रिटेन के राजनीतिक जीवन में परंपराओं को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। बदलती हुई परिस्थितियों के कारण यदि किसी परंपरा की उपयोगिता समाप्त हो जाती है तो कानून के द्वारा उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जब तक ऐसा न हो संसद के द्वारा सुस्थापित परंपराओं के विरुद्ध कानून का निर्माण नहीं किया जा सकता। चौथा, विधि का शासन। विधि का शासन ब्रिटिश शासन और जीवन का एक मूलाधार है और इसका अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं। विधि का शासन और संसद की प्रभुसत्ता परस्पर आश्रित तथा संबंधित है और विधि का शासन संसद की प्रभुसत्ता पर एक प्रतिबंध भी है। यदि ब्रिटिश संसद विधि के शासन का उल्लंघन करती है तो लगभग वैसी ही गंभीर जन प्रतिक्रिया होगी जैसी गंभीर प्रतिक्रिया किसी देश में शासन द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किए जाने पर हो सकती है। छठा, प्रदत्त व्यवस्थापन। ब्रिटेन में संसद का कानून निर्माण संबंधी कार्य बहुत अधिक बढ़ जाने के कारण इस प्रकार के व्यवहार को अपना लिया गया है कि संसद कानून की केवल मोटी रूपरेखा निर्धारित करती है और विभिन्न नियम तथा उपनियम बनाने का कार्य प्रशासनिक विभागों को सौंप दिया जाता है। यही प्रदत्त व्यवस्थापन है, यद्यपि यह सब संसद के अधिनियम के अनुसार होता है, परंतु ब्रिटेन में कई हजार नियम तथा उपनियम प्रदत्त व्यवस्थापन के अधीन बनाए जाते हैं। व्यवहार में इतनी अधिक संख्या में बनने वाले नियमों तथा उपनियमों पर संसद का कोई नियंत्रण नहीं रहता और इसी कारण व्यवहार में प्रदत्त व्यवस्थापन से भी संसद की प्रभुसत्ता सीमित हो जाती है। सातवां, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संगठन। अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा भी ब्रिटिश संसद की संप्रभुता सीमित हो जाती है। ब्रिटेन में वेस्ट रैंड गोल्ड माइनिंग कंपनी तथा सम्राट बनाम सम्राट नामक विवाद में यह निर्णय हो चुका है कि ब्रिटिश संसद सामान्यतया अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरुद्ध कोई नियम नहीं बनाएगी। इस प्रकार संसद की प्रभुसत्ता का अर्थ यह नहीं है कि ब्रिटेन की संसद जैसा चाहे वैसा कानून बना सकती है, परंतु इसका अर्थ अवश्य है कि वह कैसी भी विधि बनाए उसके द्वारा निर्मित विधि को ब्रिटेन में किसी भी न्यायालय या न्यायिक प्राधिकारों के समक्ष किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद का अर्थ सम्राट सहित लोकसदन और लॉर्ड सभा है। लोकसदन ब्रिटिश संसद का प्रथम और लॉर्ड सभा द्वितीय सदन है। ऐतिहासिक दृष्टि से लॉर्ड सभा इन दोनों सदनों में पुरानी है। लॉर्ड सभा को इंग्लैंड की लोकतंत्रात्मक प्रणाली में एक कुलीन तंत्रीय संस्था कहा जा सकता है, क्योंकि इसकी सदस्यता का प्रमुख आधार वंशगत है। 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश राजनीति में लॉर्ड सभा को लोकसदन से अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, किंतु अब स्थिति परिवर्तित हो गई है और लॉर्ड सभा न केवल द्वितीय वरन द्वितीय महत्व का सदन हो गया। लॉर्ड सभा की रचना। लॉर्ड सभा की सदस्य संख्या निश्चित नहीं है और यह उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि इसमें सम्राट प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जितने नवीन सदस्य आवश्यक समझे जाते नियुक्त कर सकता है। अवकाश प्राप्त प्रधानमंत्रियों, लोकसदन के अवकाश प्राप्त अध्यक्ष, अवकाश प्राप्त सेनापति और वायसराय, उच्च कोटि के न्यायवेत्ताओं और साहित्य विज्ञान तथा कला में प्रसिद्ध प्राप्त व्यक्तियों को ही सदस्य संख्या लगभग को ही सामान्यतया प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट द्वारा सदस्यता प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में लॉर्ड सभा के कार्य तथा शक्ति। लॉर्ड सभा की शक्तियां सदैव ही परिवर्तित होती रही है। 18वीं सदी के अंत तक लॉर्ड सभा को लोकसदन की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त थीं। फिर उसकी शक्तियां लोकसदन के बराबर हुई और 1911 तथा 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद लॉर्ड सभा लोकसदन की तुलना में बहुत अधिक शक्तिहीन हो गई। शक्ति की दृष्टि से वर्तमान लॉर्ड सभा के 1911 के पूर्व की लॉर्ड सभा की छाया मात्र ही कहा जा सकता है। ऑग तथा जिंग के शब्दों में आज लॉर्ड सभा तथा दूसरा सदन ही नहीं वरन दूसरे दर्जे का सदन हो गया है। लेकिन फिर भी लॉर्ड सभा को कुछ कार्य तथा शक्तियाँ अवश्य ही प्राप्त हैं, जिनका उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है। विधायी शक्तियाँ। वित्त विधेयक के अतिरिक्त अन्य सभी विधेयक ब्रिटिश संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं, किंतु विधेयकों के संबंध में अंतिम निर्णय की शक्ति लोकसदन को ही प्राप्त है। सन 1911 और 1949 के अधिनियम पारित होने के बाद अब स्थिति यह है कि लॉर्ड सभा वित्तीय विधेयक को एक बार अस्वीकार कर उसे एक वर्ष के लिए कानून बनने से रोक सकती है। यदि लॉर्ड सभा द्वारा अस्वीकृत विधेयक को लोकसदन दोबारा पारित कर दे और इस बीच एक वर्ष का समय व्यतीत हो गया हो, तो वह विधेयक राजा की स्वीकृति के पश्चात कानून बन जाता है, चाहे लॉर्ड सभा ने उसे स्वीकार किया हो या न किया हो। इस प्रकार लॉर्ड सभा विधेयकों को प्रस्तावित करने, एक वर्ष की अवधि के लिए उन्हें रोके रखने और अपने विचारों के आधार पर सरकार तथा जनता को प्रभावित करने का कार्य करती है। व्यवहार में लॉर्ड सभा के द्वारा अपनी देर लगाने की शक्ति का 1911 के बाद बहुत कम और 1949 के बाद कभी भी प्रयोग नहीं किया गया है। वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा की स्थिति लोकसदन की तुलना में बहुत निर्बल है। वित्तीय विधेयक न तो पहले लॉर्ड सभा में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और न ही लॉर्ड सभा विचार करने की प्रक्रिया में उन्हें अनिश्चित काल तक रोके रख सकती है। यह वित्त विधेयक को केवल एक माह तक रोके रखने का कार्य कर सकती है। वित्तीय विधेयकों के संबंध में लॉर्ड सभा सुझाव दे सकती है, लेकिन इन सुझावों को स्वीकार करना लोकसदन के विवेक पर निर्भर करता है। कार्यपालिका से संबंधित शक्तियाँ। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के लगभग 4 सदस्य लॉर्ड सभा में से लिए जाते हैं और लॉर्ड सभा का अध्यक्ष, जिसे लॉर्ड चांसलर कहते हैं, आवश्यक रूप से ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। लोकसदन की भांति ही लॉर्ड सभा को भी अधिकार प्राप्त है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों से प्रश्न पूछकर प्रशासनिक विषयों के संबंध में सूचनाएं प्राप्त कर सकें। वह शासन की नीतियों तथा कार्यों पर खुला विवाद तथा आलोचना भी कर सकती है। इसके अतिरिक्त लॉर्ड सभा विभिन्न प्रशासनिक विभागों द्वारा किए गए प्रदत्त व्यवस्थापन की जांच कर सकती है। इस प्रकार लॉर्ड सभा को कार्यपालिका पर नियंत्रित की कुछ शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन अविश्वास का प्रस्ताव पास कर मंत्रिमंडल को पदच्युत करने का कार्य लोक सदन के द्वारा ही किया जाता है, लॉर्ड सभा के द्वारा नहीं। न्यायिक शक्तियाँ, लॉर्ड सभा को न केवल व्यवस्थापन वरन न्याय के क्षेत्र में भी कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। न्याय के क्षेत्र में उसकी शक्तियाँ निश्चित रूप से महत्वपूर्ण हैं। इसके द्वारा ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड के लिए अपील के उच्चतम न्यायालय के रूप में कार्य किया जाता है। लॉर्ड सभा जब अपील के न्यायालय के रूप में कार्य करती है, तब उसके सब सदस्य कार्यवाही में भाग नहीं लेते, वरन उस समय 9 कानूनी लॉर्ड तथा अन्य न्यायिक विशेषज्ञ लॉर्ड चांसलर की अध्यक्षता में न्याय समिति के रूप में कार्य करते हैं। लॉर्ड सभा का निर्णय अंतिम होता है, जिसे संसद द्वारा कानून ही बदल सकती है, इसमें कोई न्यायालय परिवर्तन नहीं कर सकता। उपर्युक्त विवेचन से यह नितांत स्पष्ट है कि 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद लॉर्ड सभा ने विधायी और वित्तीय क्षेत्र में अपनी सभी महत्वपूर्ण अधिकार खो दिए हैं। रैमजे म्योर के अनुसार अब तो लॉर्ड सभा केवल एक पुनर्विचार और पुनरीक्षण सदन मात्र रह गया है, और इस कार्य के लिए भी यह संभवतः अधिक समर्थ नहीं है। लोक सदन, ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसद की प्रभुसत्ता का जो उल्लेख किया जाता है, आज इसका तात्पर्य लोक सदन और लॉर्ड सभा की प्रभुसत्ता से नहीं, वरन लोक सदन की प्रभुसत्ता से ही होता है। वैसे तो 18वीं सदी में भी सर रॉबर्ट वालपोल ने कहा था कि जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह लोक सदन से ही परामर्श लेता है। जब सम्राट संसद को विघटित करता है तो वह लोक सदन को ही विघटित करता है। सर रॉबर्ट वालपोल के समय तो स्थिति संदिग्ध ही थी, किंतु 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के बाद वर्तमान समय में जो स्थिति है, उसके संबंध में न्यूमैन के शब्दों में कहा जा सकता है कि संसद की प्रभुसत्ता लोक सदन में निवास करती है। लोक सदन की रचना, ब्रिटिश लोक सदन के सदस्यों की संख्या 659 है। लोक सदन के समस्त वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने जाते हैं, और जून 1970 में किए गए परिवर्तन के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्रत्येक प्रत्येक नर नारी को मताधिकार प्रदान कर दिया गया है। ब्रिटेन में पहले कुछ बहुल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी थे, किंतु अब सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय कर दिए गए हैं। लोक सदन के एक सदस्य द्वारा लगभग 75,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। वयस्क मताधिकार की इस व्यवस्था के अंतर्गत विदेशियों, देशद्रोही तथा घोर अपराध के लिए दंडित व्यक्तियों तथा पागल या दिवालिया प्रमाणित व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त चुनाव में गैर कानूनी कार्य करने वाले व्यक्तियों को 5 वर्ष के लिए मताधिकार से वंचित कर दिया जाता है। कार्यकाल, लोक सदन का कार्यकाल 5 वर्ष का है, किंतु आवश्यकता अनुसार इस कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है, जैसा कि प्रथम व द्वितीय विश्वयुद्ध के काल में किया गया। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर सम्राट के द्वारा लोक सदन को 5 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के पूर्व विघटित किया जाता है। लोक सदन के अधिकारी, पदाधिकारी, लोक सदन का सबसे प्रमुख अधिकारी अध्यक्ष होता है, जिसे नवीन संसद के निर्माण के बाद लोक सदन के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अन्य संसदीय अधिकारियों में साधन समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रमुख होता है, जिनका चुनाव भी लोक सदन के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में साधन समिति का अध्यक्ष और उसकी भी अनुपस्थिति में साधन समिति का उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है। सदन का अधिवेशन, लोक सदन का अधिवेशन लॉर्ड सभा के साथ ही प्रारंभ होता है। ग्रेट ब्रिटेन में यह परंपरा है कि वर्ष में एक अधिवेशन अवश्य ही बुलाया जाए, आवश्यकता अनुसार अधिक अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। गणपूर्ति के लिए सदन में 40 सदस्य होने चाहिए। लोक सदन का अध्यक्ष, इंग्लैंड में लोक सदन के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। प्रारंभ में अध्यक्ष द्वारा लोक सदन के विचार सम्राट के सम्मुख प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता था, इसी से इसका नाम स्पीकर हो गया। लेकिन राजतंत्र के स्थान पर लोकतंत्र की स्थापना के बाद से अध्यक्ष पद पर आसीन या पदाधिकारी बहुत ही कम बोलता है। ब्रिटेन में स्पीकर पद का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि वह 1396 से चला आ रहा है, जबकि थॉमस हंगरफोर्ड ब्रिटेन के प्रथम स्पीकर बने थे। अध्यक्ष का चुनाव, लोक सदन के अध्यक्ष पद का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण उसकी निर्दलीयता और निष्पक्षता है, और इसी कारण उसका चुनाव प्रायः सर्वसम्मति से होता है। एक बार अध्यक्ष पद पर कार्य कर चुकने के बाद यह व्यक्ति जब तक चाहे तब तक पुनर्निर्वाचित हो सकता है। इस संबंध में यह भी परंपरा है कि महान निर्वाचन के अवसर पर अध्यक्ष को उसके निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध ही लोकसदन का सदस्य निर्वाचित किया जाता है। किसी नवीन सदस्य को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करने का ढंग यह है कि प्रधानमंत्री व विरोधी दल का नेता परस्पर विचार करके किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करते हैं जो बहुमत और विरोधी पक्ष दोनों को ही मान्य हो। इस प्रकार के अनौपचारिक सहमति के बाद उसे सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। अध्यक्ष की शक्तियां और कार्य। इंग्लैंड की राजनीतिक व्यवस्था में लोकसदन के अध्यक्ष का पद बहुत अधिक सम्मान तथा शक्ति का प्रतीक है। एस गॉर्डन के अनुसार स्पीकर का पद विश्व के सर्वाधिक सम्मानप्रद, गौरवपूर्ण और कठिन कर्तव्यों वाले पदों में से एक है, और एच मॉरिसन के अनुसार स्पीकर सदन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सदस्य होता है। लोकसदन के अध्यक्ष की शक्तियों और कार्यों की विवेचना निम्न रूपों में की जा सकती है। पहला, लोकसदन का सभापतित्व। अध्यक्ष लोकसदन के अधिवेशनों का सभापतित्व करता है और सभापति के रूप में सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। वह इस बात का निर्णय करता है कि सदन के विचारार्थ कौन से प्रस्ताव रखे जाएं। संशोधनों को भी वह वही छांटता और स्वीकार करता है। जब किसी विषय पर मत लिए जाते हैं तो वही उसके परिणाम की घोषणा करता है। लोकसदन की प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में वह यह देखता है कि गणपूर्ति अथवा अर्थात आवश्यक संख्या में सदस्य उपस्थित हैं अथवा नहीं। दूसरा, वाद विवाद का संचालन। सदन के वाद विवाद का संचालन अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में लोकसदन का कार्यभार बहुत बढ़ गया है और सदन के पास कम रहता है, इसलिए अध्यक्ष की यह शक्ति बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। यद्यपि वाद विवाद के संबंध में सदन की कुछ निश्चित परंपराएं हैं, किंतु इस संबंध में अंतिम निर्णय अध्यक्ष ही करता है। वाद विवाद में किन सदस्यों द्वारा भाग लिया गया जाए, इस संबंध में वह न्याय और निष्पक्षता के साथ आचरण करते हुए सदन के वाद विवाद के श्रेष्ठ स्तर को बनाए रखने का प्रयत्न करता है। तीसरा, वाद विवाद को सीमित करना। सदन के समय का अधिकाधिक श्रेष्ठ उपयोग करने की दृष्टि से अध्यक्ष को वाद विवाद समिति करने का सीमित करने का अधिकार भी प्राप्त होता है। यदि वह ऐसा समझे कि किसी भी विषय पर पर्याप्त वाद विवाद हो चुका है तो वह उस पर वाद विवाद समाप्त करने की आज्ञा दे सकता है। अध्यक्ष को इस संबंध में कंगारू समापन का महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। चौथा, सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। सदन के सभापति के रूप में उसका एक महत्वपूर्ण कार्य सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना है। उसके पास न घंटी होती है और न मुंगरी, किंतु व्यवस्था स्थापित करने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती। अशांत सदन में यदि अध्यक्ष खड़ा हो जाए तो पूर्ण शक्ति छा जाती है, क्योंकि परंपरा के अनुसार जब अध्यक्ष खड़ा हो तो कोई अन्य सदस्य खड़ा नहीं रह सकता। डिजराइली के शब्दों में अध्यक्ष की पोशाक की खड़खड़ाहट की गड़बड़ को शांत करने के लिए पर्याप्त होती है। अध्यक्ष किसी सदस्य का नाम लेकर सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता है कि वह सदस्य अनुशासनहीनता का आचरण कर रहा है। अध्यक्ष द्वारा ऐसा किए जाने पर सदन निश्चित करता है कि संबंधित सदस्य के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाए। अध्यक्ष स्वयं भी किसी सदस्य को कुछ दिनों के लिए निलंबित कर सकता है, या सदन में अत्यधिक अनुशासनहीनता होने पर सदन की कार्यवाही को निलंबित कर सकता है। पांचवा, नियमों की व्याख्या। अध्यक्ष वाद विवाद तथा सुव्यवस्था के नियमों की व्याख्या करता तथा उन्हें लागू करता है। यदि कोई सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करता है तो अध्यक्ष को अपना निर्णय देना होता है। अध्यक्ष ही कार्य स्थगन प्रस्तावों को नियमित या अनियमित घोषित करता है। सदन के लिए किसी भी नियम के बारे में अध्यक्ष की व्याख्या अंतिम होती है। इसी आधार पर एक स्पीकर ने चुटकी लेते हुए कहा था कि स्पीकर भी पोप की तरह कोई गलती नहीं कर सकता। छठा, वित्त विधेयक को प्रमाणीकृत करने का अधिकार। 1911 के संसदीय अधिनियम के अनुसार लोकसदन के अध्यक्ष को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यदि किसी विधेयक पर यह विवाद खड़ा हो जाए कि वह वित्त विधेयक है अथवा नहीं, तो इस विषय पर लोकसदन के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है। वित्त विधेयक वह है जिसे अध्यक्ष पद वित्त विधेयक प्रमाणित कर दे। सातवां, निर्णायक मत देने का अधिकार। अध्यक्ष को सामान्य परिस्थितियों में अपना मत देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन यदि किसी विषय पर सदन के पक्ष और विपक्ष के बराबर मत हो जाए अर्थात टाई पड़ जाए तो स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। अध्यक्ष के द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पूर्व स्थापित सिद्धांतों के अनुसार ही किया जाता है, और सामान्यतया उसकी चेष्टा यही रहती है कि संबंधित विषय के भाग्य का निर्णय स्वयं करने की बजाय उस पर विचार के लिए सदन को और अधिक समय दिया जाए। आठवां, समितियों के बारे में शक्तियाँ। कौन सा विधेयक किस समिति के पास भेजा जाए इसका निर्णय अध्यक्ष ही करता है। इसके अतिरिक्त वह चयन समिति द्वारा तैयार की गई सूची में से अस्थायी समितियों के अध्यक्षों को भी नियुक्त करता है। 1945 से वह सीमा आयोगों का अध्यक्ष है। ये आयोग निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं। 9. सदन के अधिशासन के कार्य। अध्यक्ष लोक सदन के अधिशासक के रूप में कार्य करता है। जैसे अधिवेशन काल में लोक सदन में कोई स्थान रिक्त होने पर अध्यक्ष चुनाव की आज्ञप्ति निकालता है। किसी सदस्य द्वारा अपराध किए जाने पर वह उसकी गिरफ्तारी और गवाहों के लिए समादेश निकालता है। सदन के अध्यक्ष के अधीन एक सचिवालय होता है जिसमें सचिव, अधीक्षक, लेखकगण, पुस्तकालयाध्यक्ष, निजी विधेयकों के निरीक्षक रहते हैं। 10. सदन के विशेषाधिकारों की रक्षा। लोक सदन के सदस्यों की जो भी विशेषाधिकार प्राप्त है उनकी रक्षा लोक सदन के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। यदि कोई मंत्री सदन के सदस्यों के विशेषाधिकारों की उपेक्षा करे या उनके किसी प्रश्न का उत्तर ना दे या आवश्यक जानकारी ना दे या एक सदस्य दूसरे सदस्य के अधिकारों में हस्तक्षेप करें तो इन सभी परिस्थितियों में अध्यक्ष सदन के अधिकारों की रक्षा करता है। अध्यक्ष यह भी देखता है कि बाहर के किसी व्यक्ति द्वारा सदन के अधिकारों का हनन न किया जाए। 11. सदन का मुख्य प्रवक्ता। अध्यक्ष लोक सदन का मान्य प्रवक्ता होता है और सदन तथा सम्राट के बीच संपर्क सूत्र का कार्य करता है। लोक सदन के सदस्य उसी के माध्यम से सम्राट के पास प्रतिवेदन भेजते हैं और उसी के नेतृत्व में शिष्टमंडल भेजते हैं। लॉर्ड सभा में वित्तीय विधेयक को प्रस्तुत करना भी अध्यक्ष का ही कर्तव्य है। लोक सदन के अध्यक्ष के इतने अधिक विविध प्रकार के कार्य और शक्तियों को दृष्टि में रखते हुए डॉक्टर जेनिंग्स ने कहा है, अध्यक्ष के सम्मान और आदर को उसकी शक्ति और कार्यों को गिनाकर प्रकट करना संभव नहीं है। लोक सदन के अध्यक्ष की स्थिति। ब्रिटिश राजनीति में लोक सदन का अध्यक्ष एक अत्यंत सम्मानित पदाधिकारी होता है। उसकी स्थिति के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व उसकी निर्दलीयता और निष्पक्षता है। सामान्यतः अध्यक्ष का निर्वाचन निर्विरोध होता है, परंतु विरोध असंभव नहीं है। 1839 में लेफेवर, 1895 में गुली और 1925 तथा 1928 में फिट्ज़राय के निर्वाचन में विरोध हुआ था। 1950 और 1966 में भी चुनाव में विरोध हुआ था। अध्यक्ष का निर्वाचन चाहे निर्विरोध हो या विरोध के आधार पर निर्वाचित हो जाने पर जीवन पर्यंत वह अपने आप को दलीय राजनीति से नितांत पृथक और तटस्थ रखता है। निर्वाचित हो जाने पर वह अपने राजनीतिक दल से संबंध विच्छेद कर लेता है और अपने सभी कष्ट साध्य कर्तव्यों को एक निष्पक्ष न्यायाधीश की भांति संपादित करता है। उसकी निष्पक्षता का वर्णन करते हुए ऑग और जिंक ने लिखा है कि वह सभा के अंदर ही नहीं अपितु बाहर भी दलबंदी की छाया से अलग रहता है। मुनरो के शब्दों में, जहाँ तक मनुष्य के लिए संभव है वह अपने सभी कार्यों में पूर्णतः निष्पक्ष और दलबंदी से परे होता है। 1943 में क्लिफ्टन ब्राउन ने अध्यक्ष के रूप में अपने संबंध में कहा था कि अध्यक्ष के रूप में मैं न तो सरकार का आदमी हूँ और न विरोधी दल का, मैं तो लोक सदन का आदमी हूँ और उससे भी बढ़कर पीछे बैठने वालों का आदमी हूँ। लोक सदन की शक्तियाँ। ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता की बात कही जाती है और वर्तमान समय में संसद की प्रभुसत्ता ने से आशय लोक सदन की प्रभुसत्ता से ही है। लोक सदन के अधिकार और शक्तियों का उल्लेख निम्न रूपों में किया जा सकता है। 1. विधायी शक्तियाँ। ब्रिटिश संसद में 2 सदन हैं, लोक सदन और लॉर्ड सभा। संसद की प्रभुसत्ता की धारणा के अनुसार ब्रिटिश संसद किसी भी कानून का निर्माण कर सकती है, उसे रद्द कर सकती है या संशोधित कर सकती है। 1911 के पूर्व तक तो संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त थीं, किंतु 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम पारित होने के पश्चात अब इस संबंध में अंतिम शक्ति लोक सदन को ही प्राप्त है। लोक सदन द्वारा जब किसी विधेयक को पारित कर लॉर्ड सभा में भेजा जाता है और लॉर्ड सभा उसे अस्वीकार कर देती है तो लोक सदन द्वारा यह विधेयक दोबारा पारित किया जा सकता है, और यदि दूसरे वाचन की तिथि तथा दूसरी बार विधेयक के तीसरे वाचन की तिथि में 1 वर्ष का समय हो चुका हो तो लॉर्ड सभा द्वारा पारित किए बिना ही इसे दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाता है। इस तरह लॉर्ड सभा किसी विधेयक को केवल 1 वर्ष के लिए रोक सकती है और अंतिम शक्ति लोक सदन के पास ही है। 2. वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय क्षेत्र में लोक सदन की स्थिति और भी सुदृढ़ है। 1911 के संसदीय अधिनियम में वित्त विधेयक की परिभाषा दी गई है और लोक सदन का अध्यक्ष जिसे वित्त विधेयक प्रमाणित करे वित्त विधेयक समझा जाएगा। लोक सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद लॉर्ड सभा द्वारा 1 माह की अवधि तक वित्त विधेयक पर विचार करने का कार्य किया जा सकता है। 1 माह की अवधि बीत चुकने के बाद वित्त विधेयक या बजट दोनों सदनों द्वारा उसी रूप में पारित समझा जाएगा। जिस रूप में लोकसदन ने उसे पारित किया था, चाहे लॉर्ड सभा उसे अस्वीकार करे या उसमें कोई संशोधन प्रस्तावित करे। इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा की स्थिति बहुत अधिक निर्बल है और लोकसदन को इस संबंध में पूर्ण नियंत्रण प्राप्त है। तीसरा, कार्यपालिका शक्तियाँ। इंग्लैंड में संसदात्मक शासन है और ब्रिटिश कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण लोकसदन का ही है, लॉर्ड सभा का नहीं। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद लोकसदन के प्रति पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है। लोकसदन के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। वे उसके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव तथा निंदा प्रस्तावित पारित कर सकते हैं और इन सब के अतिरिक्त अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिमंडल को प्रत्युत किया जा सकता है। लोकसदन की स्थिति का मूल्यांकन और उसके वास्तविक कार्य। सैद्धांतिक दृष्टि से ब्रिटेन में संसद की प्रभुसत्ता है, किंतु जहां तक व्यवहार का संबंध है, विश्व के लगभग सभी प्रजातंत्रों में कार्यपालिकाओं अधिकाधिक शक्तिशाली होती जा रही है, व्यवस्थापिका निर्बलता को प्राप्त हो रही है। ब्रिटेन में भी वास्तविक स्थिति ऐसी ही है। जहां तक व्यवस्थापन और वित्त का संबंध है, ब्रिटिश लोकसदन का इन क्षेत्रों पर नियंत्रण बहुत अधिक संदिग्ध ही है। वस्तु स्थिति यह है कि कैबिनेट अपने बहुमत के बल पर लोकसदन के समर्थन तथा सहयोग से कानूनों का निर्माण करती तथा वित्त का प्रबंध करती है। लोकसदन का वह समर्थन तथा सहयोग बहुधा सदस्यों के विश्वास के आधार पर नहीं, वरन कैबिनेट के द्वारा अपने दल के सदस्यों पर दबाव का प्रयोग करके किया जाता है। बजट कैबिनेट के द्वारा निर्मित किया जाता है और वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तावित किया जाता है तथा लोकसदन इसे उसी रूप में पारित कर देता है जिस रूप में यह उसके सम्मुख प्रस्तावित किया गया था। इसी प्रकार सभी महत्वपूर्ण वित्तीय विधेयक मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं और केवल उन्हीं गैर सरकारी लोकसदन अपने समय का लगभग 85% भाग शासन द्वारा निश्चित किए गए कार्य के लिए ही देता है और कभी कभी तो शासन व्यवस्थापिका का शेष समय भी ले लेता है, जैसा कि 1945-48 में मजदूर दलीय सरकार द्वारा किया गया। ऐसी स्थिति में विरोध पक्ष और निजी सदस्यों को अपने विधेयक प्रस्तावित करने का ही अवसर नहीं मिलता। इस प्रकार व्यवस्थापन और वित्त के क्षेत्र में लोकसदन नेतृत्व करने या सरकार पर नियंत्रण रखने के बजाय कैबिनेट का अनुसरण ही करता है। प्रशासनिक नीति के निर्धारण और नियंत्रण के संबंध में भी ऐसी स्थिति है। लोकसदन प्रशासनिक नीति पर वाद विवाद करता है और कभी कभी अपने आलोचना के आधार पर इसे प्रस्तावित कर सकता है, लेकिन वह इसे नियंत्रित नहीं करता। सैद्धांतिक दृष्टि से कैबिनेट लोकसदन के प्रति उत्तरदायी होता है और लोकसदन इसे प्रच्युत कर सकता है तथा ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिनमें लोकसदन ने मंत्रिमंडल को प्रच्युत किया। मार्च 1979 में लोकसदन ने अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर कलहन मंत्रिमंडल को प्रच्युत कर अपनी शक्तियों का परिचय दिया था। लोकसदन की शक्ति का एक परिचय 1990 में इसे कुछ भिन्न स्थिति में मिला, जब अनुदार दल के सदस्यों की प्रतिक्रिया के कारण मार्गरेट थैचर को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। लेकिन वे अपवाद स्वरूप उदाहरण हैं और सामान्यतया वस्तु स्थिति यह है कि लोकसदन स्वयं कैबिनेट से नियंत्रित होता है। जैसा कि कार्टर लिखते हैं कि दलीय नेताओं पर अंतिम नियंत्रण लोकसदन में पराजय का नहीं वरन इस भय का होता है कि उनके द्वारा अपनाई गई नीतियों से दल में फूट पड़ जाएगी और अगले चुनाव में उन्हें पराजित होना पड़ेगा।